और उसके पश्चात हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय निर्वर भाई जी के अमृत वचन हम सभी सुनेंगे।
परम आदरणीय दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी और बहन नीरू अब्रोल जी तथा अन्य सभी मंच आसीन वक्तागण, सभा में उपस्थित भारत तथा नेपाल से आए हुए आप सभी गणमान्य आदरणीय साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, आज का दिन बड़ा शुभ दिन लग रहा है। क्यों? सबसे पहले तो बात है जीवन की पुनर्खोज, आश्चर्यवत बात है। हम सब जीवन जी रहे हैं और फिर भी हम सोच रहे हैं कि इसकी पुनर्खोज होनी चाहिए। क्या बात है, कारण क्या है, ऐसा प्रश्न क्यों उठना चाहिए? और उसका एक ही कारण है, संक्षिप्त में सुनाऊंगा, कि हम जो हैं वो हम होकर के जीना नहीं चाहते और जो नहीं हैं उसको हम अच्छी तरह सजा करके ऐसा समझते हैं कि यही हम हैं। आज आप सबका मेडिटेशन का पहला दिन था और उसमें क्या सुना आप सभी ने, कौन है हम, कौन है? कहेंगे हम आत्मा हैं। प्रश्न उठता है सुबह से रात तक कितना समय ये याद रहता है कि हम आत्मा हैं? रहता है याद? किसी से पूछो आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिसेस सो एंड सो, नाम किसका बताएंगे? शरीर का। तो सबसे पहली खोज तो यही है, स्वयं की खोज। कहानी के रूप में अगर मैं अपना सुनाऊं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इंडियन नेवी से, बड़ा उमंग था रेडार और अंडरवाटर डिटेक्शन सेट्स ऐसी ऐसी बातों का, उसकी थ्योरी सब जान ली, प्रैक्टिकल देख लिया, रेडार की क्या कहां तक पहुंच है सब समझ में आ गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन उठा, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, क्या इतने तक ही सीमित है सब? उसके फलस्वरूप एक खोज, और खोज किस बात की, हु एम आई, मैं कौन हूं? दूसरा, परमात्मा कौन है? हम परमात्मा के साथ कौन सा संबंध जोड़ें? इस तरह के क्वेश्चंस कुछ किताबें पढ़ने से, थोड़ा प्रश्न उठते हैं, कुछ अभ्यास करने से प्रश्न उठते हैं। ...1959 में 1 फरवरी पहली बार मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर गया और वहां पर इन सब क्वेश्चंस का उत्तर कुछ दिन के अंदर मिला, लेकिन मेरी जो आंतरिक इच्छा थी कि सिर्फ जानकारी के लिए तो किताबें मैंने बहुत पढ़ ली, स्वामी राम तीर्थ की पढ़ ली, विवेकानंद की पढ़ ली, गांधी जी की ऑटोग्राफी पढ़ ली, और भी कुछ पढ़ ली, वो जितनी पढ़ी अभ्यास थोड़ा बहुत किया, और एक किताब ऐसी पढ़ी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो पढ़ने के बाद रात की नींद ही चली गई थी। लेकिन जब सेवा केंद्र पर बॉम्बे में जाना हुआ और वहां पर ये पहले जो प्रश्न है, हु एम आई, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनका कर्तव्य क्या है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन सब बातों का जानकारी मिलने के बाद जब अभ्यास किया, मेडिटेशन की, तो समझ में आया कि वास्तव में मैं कौन हूं। स्वयं को ऐसा लाइट फील किया, जैसे सुनते हैं आत्मा लाइट स्वरूप है, दिव्य लाइट है, स्टार लाइक है, उसका एक्सपीरियंस, और उस समय उस एक्सपीरियंस में इतना अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया, उसके बाद था परमात्मा की याद, उनके परिचय के अनुसार वो भी बहुत आनंद आया उसमें। लेकिन आप थोड़े दिन में, यहां 2-3 दिन में, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की हिस्ट्री को जानेंगे कि ये सब ज्ञान जिनके द्वारा मिला, ब्रह्मा बाबा जिनको हम कहते हैं, इन्होंने तो ढक दिया उनको पूरा ही, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स रिवील करने की बजाय उनको ढक दिया है पूरा। इसके पीछे है उनका फोटो, ब्रह्मा बाबा लौकिक दुनिया के हिसाब से ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, डायमंड मर्चेंट, मोस्ट सक्सेसफुल फैमिली मैन, वो सब होने के बाद भी उनकी खोज खत्म नहीं हुई थी, और उस खोज में उन्होंने 60 साल की उम्र में परमात्मा का दर्शन किया, रियलाइजेशन हुई उनको, साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ, ही वॉज डायमंड मर्चेंट, जिन्होंने क्वीन एलिजबेथ फर्स्ट के लिए डायमंड्स का एक हार बना करके तैयार करके उनको दिया था, जो अभी भी टावर ऑफ लंदन वहां पर वो हार रखा हुआ है। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद वास्तविकता की खोज थी, परमात्मा की खोज थी, और 60 साल की उम्र में जब उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ और उसमें पता चला परमात्मा कौन है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, और परमात्मा की तरफ से उनको आदेश मिला कि आप निमित्त बनो, आज सारी दुनिया इस अंधकार में है, ना स्वयं को जानते हैं ना पिता परमात्मा को जानते हैं, सबके अंदर जागृति लानी है ताकि अपनी जीवन को जीना सीखें, फिर से अपनी जीवन को रीडिस्कवर कर सके। और उन्होंने उस समय अपने पार्टनर को एक टेलीग्राम भेजा। बड़ी आश्चर्य की बात है, अल्फ को अल्लाह मिला, स्वयं को अल्लाह मिला, बे पार्टनर जो है तुम्हें बादशाही मिली, और उनको ये भी लिख दिया मेरा जो हिस्सा हो मुझे भेज देना बस। हैदराबाद सिंध में उन्होंने सत्संग शुरू किया। वो सत्संग बढ़ करके एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा। और आप सोचिए, कोई संन्यास लेता है, कुछ करता है, तो अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे के जाता है। उन्होंने ये नहीं किया, उनका जो कुछ भी उनको हिस्सा मिला, दैट बिकेम द सीड मनी फॉर स्टार्टिंग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहली जनवरी 1937 के दिन उन्होंने अपनी विल लिखी। उसमें क्या लिखा, मैं लखीराज, उनका नाम दादा लेखराज था, लखीराज, अपना तन मन धन सब ओम मंडली माता के चरणों में समर्पित करता हूं। साइन क्या किया, ओम। और उस समय उन्होंने बहुत एक विचित्र बात की, आठ बहनों का ट्रस्ट बनाया, बहनों का, जिसमें तीन माताएं, पांच कुमारियां 18 साल से ऊपर की उम्र की। क्यों, बाबा को आदेश था कि आपको निमित्त बनना है विश्व परिवर्तन करने के लिए। विश्व परिवर्तन का मतलब है विश्व की कॉन्शियसनेस को परिवर्तन करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से उसको सोल कॉन्शियस बनाना है, गॉड कॉन्शियस बनाना है, उसके लिए उनको तैयार करना था। और उसमें टीचर्स, आज भी दुनिया के अंदर सबको पता है, बहनें माताएं टीचर्स, दे आर मच बेटर देन मैन। और उसमें एक और राज है, यू ट्रांसफॉर्म ए मैन, यू ट्रांसफॉर्म वन पर्सन, यू ट्रांसफॉर्म ए वुमन, यू ट्रांसफॉर्म द होल सोसाइटी। तो इस तरह से जो रीडिस्कवरी उन्होंने खुद की, उसका लाभ जन जन तक पहुंचे, उस बात को लेकर के। और मैं जब पहली बार उनसे 13 जुलाई 1959 को माउंट आबू में मिला था, आई हैड द विजन ऑफ गॉड, द सुप्रीम सोल उनके मस्तक के ऊपर। और उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया, 20 साल की उम्र थी मेरी, कि आज से ये जीवन आपकी सेवा के लिए होगा। और 25 साल की उम्र में मैंने अपना जॉब छोड़ करके पूरा समर्पित जीवन ईश्वरी सेवा के लिए दिया। 10 साल उनका सानिध्य मिला, बहुत कुछ उनसे देखने से, इंटरेक्शन से, साथ खेलने से, बहुत सारी बातें। महीनों महीनों तक उनके सानिध्य में रहे, बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने एक ही महामंत्र मेरे कान में दिया, बच्चे जब तक सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है, तब तक आराम नहीं करना है। वर्तमान कलयुग है, सत्ययुग की स्थापना हो रही है और आप हम सभी आज पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, कॉन्फ्लुएंस एज में हैं। आज आपको भी अपने आप की जागृति मिली, अपनी स्मृति मिली, अपने आप को पहचानने का मौका मिला, परमात्मा पिता को पहचानने का मौका मिला। आपका जीवन आज से बिल्कुल एक नया जीवन बनेगा और उसके फलस्वरूप नई सृष्टि बनाने में आपका सहयोग मिलेगा। ओम शांति।
आदरणीय भाई साहब ने हम सभी को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया, उनके बारे में विस्तार से और आगे के सेशंस में हम सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा जो परमात्मा पिता के स्वयं माध्यम थे, एक विशेषता थी कि वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने फॉलोअर्स तैयार नहीं किए परंतु आध्यात्मिक लीडर तैयार किए। और आदरणीय भाई साहब और दादियां वो आध्यात्मिक लीडर आज हमारे बीच में हैं। और दादियों को भी हम देखते हैं, हमारे बड़ों को देखते हैं कि वो भी ऐसे आध्यात्मिक लीडर तैयार कर रहे हैं। तो हमारी दादियां साक्षात आध्यात्म की वो प्रतिमूरत सूर्य की भांति आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं। दादियों के अमृत वचन हम सभी सुनेंगे, उसका अमृत पान तो करेंगे ही, लेकिन परमात्मा पिता ने अपनी सर्व शक्तियां उस ज्ञान गंगा को इस धरती पर उतारा, वो सारी शक्तियां वो ज्ञान दादियों के अंदर समाया हुआ है। और इसलिए दादियों के वचन ही नहीं परंतु उनके नयन, उनके आध्यात्मिक शक्ति हमें जीवन को प्रेरणा देती और परिवर्तन करने की शक्ति देती है। तो आज हम सभी को ये सुनहरा अवसर मिला है, डबल रोटरी खुली है, जो दोनों ही दादियां आज हमारे बीच उपस्थित हैं, तो क्यों ना हम इस अवसर का पूरा पूरा लाभ ले। दादियों के नैनों से जो आध्यात्म की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, हम सभी दो मिनट के लिए उठकर खड़े हो जाएंगे और अपने नेत्र खुले रखकर दादियों के नेत्र से, उनके मस्तक से जो आध्यात्मिक तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, उन तरंगों को आज हम रिसीव करेंगे और जीवन को एक नई दिशा देने का एक दृढ़ संकल्प हम सभी करेंगे।
Yeah.
आज इस सभा का वातावरण पूर्णतः अलौकिक है और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ प्यार और शक्तियों की बारिश हो रही है। और हो भी क्यों नहीं, हमारे बीच श्रद्धेय परम आदरणीय अलौकिकता की साक्षात मूर्त दादी हृदय मोहिनी जी विराजमान है। दादी जी, आपके लिए तो कहने के लिए शब्द ही नहीं है, परंतु रोशनी तारों की फलक पर चमकती है और खुशबू फूलों की बाग में महकती है। दुनिया ढूंढती है जिस शक्ति और रूहानियत को, दुनिया ढूंढती है जिस शक्ति और रूहानियत को, वो तो दादी जी आपके चेहरे पर छलकती हैं, आपके चेहरे पर छलकती हैं। आदरणीय दादी जी के अमृत वचनों से आज हम सब अपने दिल, अपनी झोली, मन, बुद्धि सबको ओतप्रोत करेंगे।
ओम शांति। आज आप सबको देखकर हमें खुशी तो हो रही है, लेकिन खुशी के साथ ये भी उमंग आ रहा है कि क्यों नहीं हर एक बच्चे के नाते से बाप को याद करना तो आदत ही है, और हर एक बच्चा बाप को भूल भी नहीं सकता है। तो परमात्मा हमारा पिता है, पिता के रूप से अगर परमात्मा को देखो तो दाता भी है, पिता भी है, सब संबंध निभाने वाला है। उस परमात्मा को, पिता को, बंधु को, जो भी कुछ कहो, उसको याद करना तो हमारा स्वाभाविक है। पिता को भूलना तो राइट नहीं होता है ना। तो परमात्मा हमारा पिता है ये तो सब मानते हैं, मानते हो ना आप? परमात्मा को पिता है मानते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, मानते तो है सभी, लेकिन जानते हैं वो है कौन और वो क्या चाहते हैं हम बच्चों से? छोटी सी बात ही है। वैसे भी जो भी लौकिक पिता है वो सभी ये तो जरूर चाहते हैं कि हमारा बच्चा लायक बने और लायक बन करके दुनिया के काम में आवे। तो हम देखें कि हमारा काम कौन सा है। हमारा काम यही है एक दो को, एक पिता के बच्चे हैं उस नाते से एक दो के हमेशा कल्याण का ही सोचे। जैसे छोटी सी फैमिली आपकी है उसमें क्या सोचते हो? बच्चा भी लायक बने, जो भी पति है, बच्चा है, बच्ची है, लायक बने। तो आप सोचो आप जो चाहते हो वो परमात्मा यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। वो कहते हैं मेरा एक एक बच्चा विश्व के लिए कल्याणकारी बने। ये तो आप सब भी चाहते हो ना, तो हम सभी कल्याणकारी विश्व के लिए बने, चाहते हो? हाथ उठाओ, देखो हाथ कितने अच्छे उठाए हैं। और मैं समझती हूँ तो दिल की चाहना सभी की यही होती है, लेकिन बीच बीच में कुछ रुकावट पड़ जाती है, उसको मिटाने की हिम्मत चाहिए। वो अगर आपको चाहिए तो हम बहने आपको दे सकती है। जो भी दिल में खुशी चाहिए, दिल में उमंग चाहिए, दिल में प्यार चाहिए, जो भी आप समझते हो चाहिए, वो चाहिए आपको यहाँ के संग से मिल सकता है। आप करके देखो, और इजी है, कोई छोड़ने की बात नहीं है। बुराई छोड़ना वो तो सभी चाहते हैं, बाकी कुछ छोड़ना थोड़ी है। आप कहेंगे आप लोग छोड़ के आ गए, लेकिन हम तो छोटेपन में माँ बाप के छुट्टी से बड़े उमंग से पत्र द्वारा हमको छुट्टी दी और हम खुशी खुशी से आए। और जिस खुशी से आए उस खुशी से ही हमने अनुभव किया। तो अगर खुशी चाहिए, क्योंकि जीवन में बातें तो आती है, बातों का आना ये तो खत्म नहीं होता है, लेकिन हम उनों को कैसे आराम से समझ करके सोच करके हर बात को हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सबका अनुभव है कि अगर हमारे में परमात्मा की याद है तो जहाँ परमात्मा साथी है वो काम कुछ रह सकता है क्या? परमात्मा का वायदा भी है, पिता है ना, तो परमात्मा पिता का वायदा भी है। बच्चे आप एक कदम उठाओ और मैं 10 कदमों की मदद दूंगा। और हमने प्रैक्टिकल देखा कि एक कदम का 10 कदम क्या 100 कदम परमात्मा मदद देता है। प्रैक्टिकल हम लाइफ पास की है तो यही अनुभव हुआ है। तो हम तो यही आपको कहेंगे कि आप आए हैं, ये आपका भाग्य है जो आप यहाँ पहुँच गए हो। और हमें एक एक को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि इनका भाग्य कितना अच्छा है। जो यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, अभी कहाँ तक पहुँचते हैं वो तो आप जानो, लेकिन हमारी यही चाहना है कि जो भी आए हो वो जो सुना है सबका अनुभव भी सुना होगा बीच बीच में, वो करके देखो। जहाँ रहे पड़े हो, जो कुछ कर रहे हो वो करो, लेकिन ये थोड़ा अटेंशन रखो परमात्मा के याद का। परमात्मा नहीं भूले बस, और कोई मेहनत नहीं है। परमात्मा हमारा पिता है, आप लौकिक पिता को कभी भूल सकते हो क्या? जन्म वाले पिता को भूल सकेंगे क्या? कुछ भी हो जाए लेकिन पिता को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि पिता परवरिश करता है। वो छोटे से बड़ा करने में कितनी मेहनत एक एक बच्चे से करते हैं। तो पिता जो चाहता है वो बच्चा चाहता ही है, ये तो एक नियम है। कोई कोई ऐसे होते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी पिता की आज्ञा मानते हैं। तो परमात्मा हमारा पिता है, वो हमको क्या कहता है वो भी तो मानना चाहिए ना। और परमात्मा ऐसा पिता है जो हमको एक कदम उठाओ तो 10 कदमों की मदद करता है। ऐसे पिता हमको कहता है सिर्फ मुझे याद करो, और कुछ नहीं कहता है। मुझे याद करो क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा जो आपको प्राप्ति होगी वो आपके जीवन का मूल आधार है। मूल आधार हर एक का क्या है? हर एक सोचता है हमारी जीवन जो है अच्छी हो, सुखदायी हो, और किसके मदद हो तो मददगार भी बने, यही सोचते हैं। और ये सोच तो हर एक का पूरा हो भी सकता है, लेकिन इतना सिर्फ उमंग उत्साह हो, कोई भी बात जीवन में आवे उसमें परेशान नहीं हो। अरे परमात्मा के बच्चे हैं, क्या नहीं सामना कर सकते हैं? परमात्मा पिता को याद करेंगे तो ताकत आ जाएगी, और कितनी भी मुश्किल बात आप कर सकते हो, ये हमारा अनुभव है। जो चाहो आप बन सकते हो, जो चाहो आप कर सकते हो, लेकिन क्या है उस लगन को लगे रहे। ऐसे नहीं कोई बात आई तो हार्ट फेल हो जाए थोड़ा, नहीं। बातें तो आएंगी लेकिन बातें भी हमको बहुत सिख्या देती है। बातें हमको कोई भले पड़ी क्या भी लेती है बात, लेकिन साथ में सिख्या बहुत देती है, हमको योग्य इतना बनाती है जो हम संसार में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। तो मैं तो यही आपको कहूंगी कि अगर जीवन आपको बनानी है, भाई बनाई तो है जीवन, लेकिन इसमें अगर सुख शांति चाहती हो, हर एक चाहता है मेरी लाइफ जो है ना बहुत सुखी हो, ये हो, उसके लिए सिर्फ परमात्मा को भी अपना बाप याद करो। बाप ने, बाप की कोई भी बात होती है बच्चा मानता है। तो परमात्मा हमारा जन्म जन्म का पिता है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का पिता वो ही है। तो उसकी बात क्या नहीं मानेंगे? वो कहता कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात कहता है मुझे याद करके काम करो, बस मुझे भूलो नहीं, और मैं जो सिख्या देता हूं उसको अटेंशन दे करके प्रैक्टिकल में लाओ, बस। ये मुश्किल है क्या? पिता की आज्ञा मानना मुश्किल है? हाथ उठाओ, सहज है ना? तो परमात्मा पिता जन्म जन्म का है, वो तो एक जन्म का पिता है, लेकिन जन्म जन्म का पिता है, उसकी बात मानने में क्या है? बहुत खुशी होंगी, हमको अनुभव है परमात्मा ने क्या कहा और मैं क्या कर रही। बस उसके मत पर चलना। तो हम तो आप सबको देख करके बड़ी खुश हो रही है कि आप सुनने के लिए आए हैं और बनने के इच्छुक है तभी सुनने के लिए आए हैं। तो जो भी कोई नए आए हो उनको मैं दिल से कहती हूँ कि आप इस ज्ञान को समझ को धारण करके चलेंगे तो आपको मेहनत एकदम नहीं करनी पड़ी, फल उसका मिलेगा। तो ओम शांति।
परम आदरणीय दादी जी, आपकी उपस्थिति ही हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। लेकिन आपने अपने प्यार भरे वचनों से, प्यार प्यार में ही हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति और उमंग भर दिया। तो हम सभी जरूर संकल्प करते हैं और याद रखते हैं कि हिम्मत का एक कदम हमारा और मदद के 100 कदम परमात्मा पिता के। और हम सब हिम्मत करेंगे और परमात्मा मदद को प्राप्त कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो जो ऐसा संकल्प करते हैं वो सभी एक हाथ की ताली बजाएंगे, दादी को कहेंगे हम ऐसा करेंगे, परमात्मा मदद जरूर लेंगे और हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। कहते हैं जैसे फूलों को खुशबू चाहिए महकने के लिए और परिंदों को आवाज चाहिए चहकने के लिए, इसी तरह हम सबको भी आज शुभ आशीष चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये साल निश्चित ही हम सभी के लिए जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। हमारे बीच परम श्रद्धेय आदरणीय दादी जानकी जी उपस्थित हैं। शांति, प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम, आदरणीय दादी जी के ब्लेसिंग निश्चित ही हमें इस राह पर चलने की शक्ति जरूर देंगे। आदरणीय दादी जी,
मैं 3 बारी ओम शांति में, ओम शांति, ओम शांति, अभी ओम शांति। पहला ओम शांति, मैं कौन? यंगुली, मैं कौन? जब निर्भय भाई बता रहा था, दादी बता रही थी, क्या बता रही थी, मैं कौन, मेरा कौन, अंगुली ये है ना, पहले मैं कौन, मेरा कौन, अब मुझे क्या करने का है। 3 बातें प्यारे बाबा ने ऐसी सिखाई है। अभी प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बाबा बोलो, प्यारे बाबा बोलो, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ये सब सभा को देख मैं क्या कहूँ, सभा को देख लगता है सभी बाबा के बच्चे सर्वगुरु संपन्न सेवा का संपूर्ण बनने के लिए तैयार बैठे हैं। सुना मेरी बात, सर्वगुण संपन्न सोरा कड़ा संपूर्ण, अभी बनना है हमको, बाबा बना रहा है, मुझे बनना है। क्या बनना है? किसी का अवगुण नहीं देखने का है, दिखाई नहीं पड़ता है। दादी, किसका अवगुण दिखाई नहीं पड़ता है? जहां बाबा है वहां बच्चे हैं, बाबा कहता है बच्चे तुमको क्या करने का है, तो बाबा जब निर्भय भाई शुरू शुरू की बात सुना रहा है सब मंडली की बात, मैं तो मंडली की बात आप बहुत पीछे आए हैं, मैं तो बाबा को पहले से ही देखा था, कमाल है मीठे बाबा की, माता है पिता है सखा है स्वामी है सतगुरु है। माता है पहले मुझे याद आता है ओ मंडली में बाबा खटिया पर बैठा था, दृष्टि दे रहा था, बाबा की दृष्टि में इतना सुख मिला क्योंकि शिव बाबा निमित्त मनाया ब्रह्मा बाबा को, समझा शिव बाबा ने परमात्मा बाप ने निमित्त बनाया ब्रह्मा बाबा को, ऐसा निमित्त बनाया जो आज साकार में जो बाबा था वो अव्यक्त होकर के कैसे हमको अपनी भावना दे रहा है। पता है सभी को साकार बाबा कौन है, इस शरीर में होते हुए न्यारा और सबका प्यारा। मैं तो बाबा को ऐसे शुरू में देखा न्यारा सबका प्यारा, परंतु बाबा टीचर भी है सतगुरु भी है। हमेशा मैं अपनी बात सुनाती हूँ, बाबा अरे बाबा कौन है कैसा है क्या करता है क्या कराता है, सुना क्या करता है क्या कराता है, साखी होकर के देखो और बाबा को साथी बना दो, ताली बजाओ ना बाबा को, बाबा को साथी बना दो और साखी होकर के सभा में देखो, डायमंड हॉल में बैठे हैं दादी, डायमंड हॉल में सब जो बैठे हैं डायमंड बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौरी बदले खोया रे। ये मैं भक्ति में भी कहती थी, हीरे जैसा जन्म है तुम कौरियों के बिचारे क्यों जीवन खरारस कर दो, कहां कौरी मैं दिखाऊं मैंने देखा है कौरी की वैल्यू है, कौरी कैसी छोटी होती है पर उसका वैल्यू क्या है, अभी हमारी वैल्यू क्या है। दादी कितनी खुशी है बाबा बाबा करके क्यों? हीरे जैसा जन्म है। मैं तो ऐसे महसूस करती हूँ, निर्भय भाई क्या कर रहा है? हीरे जैसा जन्म है ना, हमारे को, हमको 40 साल विदेश में सेवा के अर्थ बने में तो आया, पर न कभी 5 रुपया या 5 पाउंड मेरे हाथ में नहीं देखा है। मैं क्या जानू, कभी शॉपिंग नहीं की होंगी विदेश में होते हुए। शॉपिंग कैसे की जाती है मुझे पता नहीं है। क्या करेंगे, सफेद कपड़े की साकाली हम, मैं सारे मुल्क के वाली, सफेद कपड़े बहुत दिल से प्यारे से हैं। जैसे बाबा ने सफेद कपड़े पहनाया और खीसा खा ली, पर नशा इतना हम सारे विश्व के मालिक बन रहे हैं। सब विश्व के मालिक है बाबा ने विश्व में राजाई करने के लिए लायक बनाया, विश्व में राजाई करने के लिए। इतना नशा चढ़ा हुआ है, राजाई क्या है? मैं कल परसों अपने बहनों को कह रही थी, भाइयों को कह रही थी, जो मेरे आगे घूमते हैं, मैं नशा चढ़ता है, अभी हम राजाई में बैठे हैं। राजाई में बैठे हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? राजाई क्या है? सच तो भी तो रच, ये सिंधी में कहते हैं सच तो भी तो नच। इतना सच्चाई में प्यार है बाबा के साथ। मैंने बाबा को, शिव बाबा जब से प्रवेश हुआ उसके पहले भी देखा था, इतना मीठा इतना प्यारा शिव बोला भगवान, इतना मीठा इतना प्यारा लगता है। देखते हैं कोई कोई मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तेरे में ये शक्ति कहाँ से आई है? मेरा बर्थडे कल परसों मनाया, ये परमात्मा बाप की वंडरफुल सर्वशक्तिवान है ना, मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, माँ भी है बाप भी है, टीचर भी है सतगुरु भी है, परंतु मुझे लगता है भक्ति मार्ग में स्वामी है मेरा, स्वामी की दा सतगुरु। तो स्वामी जब दिल से निकलता है तो हमारा ये सब जो बैठे हैं या पांडव भवन में म्यूजियम देखा है, दिखाऊंगा पांडव भवन में म्यूजियम जो बना भाई, कितना अच्छा म्यूजियम है।
आज दूसरा दिन है
भाई मेरा, अभी ये तो शांति वन में बैठे हैं ना, पर पांडव भवन में जो म्यूजियम बनाया उसमें बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम कौन हो? मुझे बहुत नशा है, हम कौन है, किसके है, क्या कर रहे हैं, हम कौन है, सुनो हम कौन है, किसके है, क्या कर रहे हैं, छोड़ो, नशा चढ़ा हुआ है। भाई मेरा, मुझे माइक देते हो तो माइक उठाने में ले, जब बोल उठाए मुझे माइक क्यों देते हो? आप इतनी अच्छी बातें सुनाओ, मैं कम सुनाऊंगी, बस कैसे पूरा कराओ, दादी कैसे पूरा करो। मैं सभा को देख खुश हो रही हूँ, सलाह दीदी है, सलाह बाबा ने कहा इसको ऐसा बनाओ, बाबा ने कहा जो आज सलाह दीदी है ऐसे प्रोग्राम की, क्या कैसे दीदी बनी, दीदी दादी कैसे दादी बनी, कमाल है उसकी। मैं दादी को देखती हूँ तो मेरी दिल कहती है मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें देखता रहूं। एक हमारा भाई है वो गीत गाता है, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें देखता रहूं, क्यों देखता रहूं, क्यों देखता रहूं, भाई साहब क्यों देखता रहूं, मजा आता है देखने में। मैं ना बाबा मैं तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं। ये यहाँ बैठी है ना, तो ये बैठी है ना, शिवानी है ना, क्या बाबा मैं तुम्हें देखता रहूं। अच्छा ओके, ओम शांति, मेरा ओम शांति, ओम शांति, इशारा मिल रहा है। काम नहीं लो, सुनना सुनाना सहज है। अच्छा ये भी नया बना है,
कैंडल लाइटिंग है।
चलो ओके।
आदरणीय दादी जी को हम सभी ने देखा और सुना भी। आप सभी जानते हैं कि दादी जी की उम्र अभी क्या है। दादी जी ने 100वें वर्ष में अभी प्रवेश किया है। 1 तारीख को दादी का 99वें जन्मदिन मनाया, तो दादी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियों के साथ। इस उम्र में भी आप देख रहे हैं कि एक इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन को आप चला रही हैं और एक ऐसे आध्यात्मिक लीडर बनकर और हम सबको भी प्रेरित कर लीडर बनाकर चला रही। दादी जी की एक बात जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है, इस उम्र में भी दादी जी कहती मेरा हाथ कभी कांपता नहीं है, तो पूछा क्यों, कहा कि ये हाथ भगवान के हाथ में दिया है तो कांपेगा कैसे। हमारी दादियां हमारे बीच में आएंगे, हमारे मंच को भी मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलित कर हम उद्घाटन करेंगे। साथ ही हमारे और भी जो अतिथि जिनको विशेष निमंत्रण दिया है वे हमारे बीके भाई बहने भी।
मूर्ति मिस्टर एससी त्यागी, मिस्टर देवेंद्र टंडन सब पानी
बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं,
प्लीज करो बिजलाल भाई अनुभूति अरोरा भाई को मेटी
देखता रहूं,
चंद्रिका बहन हिम्मतनगर देवयानी बहन हैदराबाद गिरिजा बहन न्यू दिल्ली ज्योति बहन न्यू दिल्ली किरण बहन दिल्ली पीयूष भाई चाची बहन प्रमिला बहन फ्रॉम मुंबई संगीता बहन सल्ला बहन फ्रॉम पानीपत सौरभ गुप्ता फ्रॉम यूएस सुरेश गुप्ता नरेश गुप्ता वेद व्यास भाई विनोद जैन
जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम, जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, खुशियों के झूले में झूलता रहूं, दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो पापा देखता रहूं, देखता रहूं, दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं। सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं, सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं, पास तेरे आते ही बाबा सब भूल जाऊं, पास तेरे ही आते बाबा सब भूल जाऊं, एक तेरी महिमा गाता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। तेरे में खो जाऊं ऐसे बाबा 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 ओ प्यारे मेरे बाबा, बाबा 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 ओ मेरे कर बाबा, बाबा मेरे प्यारे बाबा, याद में तेरे हो जाऊं ऐसे, मैं जानू दिन रात बीत जाए कैसे, ना जानू दिन रात बीत जाए कैसे, तेरे ज्ञान रत्न से, तेरे ज्ञान रत्न में खेलता रहूं, खेलता रहूं, बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, बाबा Bye.
अनुरोध है कि कॉन्फ्रेंस खत्म। कहते हैं कि जो सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस चलने का हौसला अगर आप जैसा हो तो आप जैसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। निश्चित रूप से ऐसी एक शख्सियत को मैं हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड न्यू दिल्ली, जो कि एक रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर है, उसके आप चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एक महिला होने के हिसाब से इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करें, ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे बीच पहुंची माननीय बहन नीरू एब्रोल का हम सभी इस कार्य के लिए बहुत बहुत जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
मुझे लगता है कि इतने क्षण जो हमने अभी महसूस किए, लोगों की जो हमने बातें सुनी, अब कुछ रहा नहीं कहने को, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल लगेगा कहने को, पर सिर्फ यही है कि जो डायस पे बैठे लोग हमारे साथी भाई बहनों, मेरा ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई मेरा जो कनेक्शन रहा, और पहले मैं सुना करती थी और माउंट आबू वहाँ पे मैंने देखा भी था, पर मेरा अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। पर अब जब से मैंने 26 साल स्टील अथॉरिटी में बताए हैं और 7 साल अभी मैंने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में बिताए हैं और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अभी कुछ 2-3 साल पहले ही दिल्ली में से मिस्टर पीयूष ये हमारे ऑफिस में आए और उस टाइम हमारा विजिलेंस वीक होने वाला था, तो पहली बारी मैं इनसे मिली, पहले मैं मिली नहीं थी, तो ये आए तो इन्होंने जैसे हमारे साथ हमारी आपस में कॉन्वर्सेशन हुई, जैसे इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, जैसे इनकी अपनी पर्सनालिटी थी, तो बहुत इम्प्रेस हुई मैं, क्योंकि इनके साथ ब्रह्म कुमारी गिरिजा भी थी और हमने कहा अच्छा आप एक हमारा प्रोग्राम कर दें, और इन्होंने हमारे यहाँ पे प्रोग्राम किया, जिससे हमारे एक्चुअली सभी को पता है कि जब आप जॉब कर रहे हैं तो टेंशन्स भी रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, फैमिली के हुए, पर्सनल के, प्रमोशन नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें जिससे लोग अफेक्ट होते हैं और अपने मानसिक तनाव में बहुत रहते हैं। तो इनका जब हमने लेक्चर इन्होंने दिया वहाँ पे, लोगों को मेडिटेशन कराई एंड हॉल में ही हमने किया, सब कुर्सी पे ही बैठे हुए थे हमने किया, पर जो इम्पैक्ट आया वो हमें इतना अच्छा लगा कि लोगों ने कहा कि हमें और भी यहाँ पे और सेशंस हमारे कराते रहें, तो हमने फिर उसको उस कार्यक्रम को आगे रखा। फिर जब हमारा एनवायरमेंटल वीक हुआ तब हमने बुलाया, हमारे 4 यूनिट्स हैं, पानीपत, भटिंडा, नंगल, विजयपुर, और यहाँ पे मेरा टूर होता रहता है, मैं वहाँ जाके देखती रहती हूँ, तो इनवेरिएबली मैं देखती हूँ कि वहाँ पे मुझे, जैसे पानीपत गई तो वहाँ पे जो ब्रह्म कुमारीज का जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है वो ज़रूर मुझे मिलने आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं, सिमिलरली भटिंडा, नंगल, और हमारे यहाँ वहाँ पे भी ये काफ़ी सेशंस लेते हैं। तो आई फील कि एज कॉरपोरेट्स जो हैं, जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं गेन किया, एक तो आप यहाँ करेंगे बट आप अपने कॉरपोरेट्स में ये और भी करा सकते हैं, बिकॉज आजकल एवरीवन इज अंडर टेंशन, तो हाउ टू कूल इट, कि आपका जैसे आपका आ रहा है रीडिस्कवरी, बिकॉज ऑन द वे हम कुछ भूल गए हैं, हमें अगर हम जूनियर मैनेजर हैं तो असिस्टेंट मैनेजर बनना है, डिप्टी मैनेजर बनना है, जनरल मैनेजर बन रहा है, डायरेक्टर बनना है, चेयरमैन बनना है, इसी भागदौड़ में हम रह गए हैं। पर मुझे लगता है कि साथ साथ हमें अपनी जो चीज़ें जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला है वो ज़रूर हम याद रखें। मेरा एसोसिएशन जो यहाँ का महामंत्र है ओम शांति, मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, पर मेरा इसका एसोसिएशन बहुत पुराना है, हमारे गुरुजी हमें बताया करते थे कि अगर किसी टाइम भी आपको अपने प्राण और मन को मिलाना है उसके लिए आप ओम शांति करिए, जब सांस इनहेल करते हैं तो ओम करिए, जब छोड़ते हैं तो शांति, तो इनवेरिएबली आपको इसमें जस्ट लाइक आपका एकदम मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और अगर आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो जैसे माला में मन के बनते हैं ऐसे आपका अपने प्राण भी चलेंगे और आपका जो ऐसे वो कहते हैं ना मोक्ष की पगडंडी है इसी वे पे जाती है। तो ये महामंत्र आपका सिर्फ कहने पे नहीं करना चाहिए, ये आप ऑटोमेटिकली आई थिंक ड्यूरिंग द डे यू कैन गो ऑन डूइंग इट। इसमें आपको कोई आपका ना तो कोई एनर्जी लगती है एंड इट इज वेरी आराम से किया जाता है। और आप करेंगे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अपना जो संतुलित है अपने शरीर का संतुलन है वो कितना बढ़िया बन जाता है। और इसके अलावा मेरा बाकी तो ओम सबको पता ही है कि अ उ म से बना हुआ है, अ परमात्मा का वाचक है, उ आत्मा का है, म प्रकृति का है। तो हमें जो करना है हमारी आत्मा को ओम की तरफ लेके जाना है, ना कि प्रकृति के जंजाल में हमें फंसाना है। तो ये आप सब ध्यान रखें। बाकी आप सब आए हैं दूर दूर से यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ का एनवायरनमेंट है इसी से आपको आधी शांति तो वैसे ही मिल जाती है। तो जब आपके तीन दिन जो आप गुजार रहे हैं अपने अच्छे दोस्त बनाइए, अपने जितना भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे फुल हार्ट से करिए पूरा। उसमें जितने इनके सेशंस है जो मैं सुन रही थी बहुत सुंदर सेशंस ये रख रहे हैं उसको पार्टिसिपेटिव बनाएं। और जैसे कहते हैं ना कि अपनी लंग्स को ड्राई क्लीन करके जाएं कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। स्पेशली जो दिल्ली से आए होंगे उनको लगता होगा कि एकदम ही बड़ा फ्रेश एनवायरनमेंट है, तो इसका महसूस करें। तीन दिन बहुत बढ़िया से रहें और अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जो मैं पहले कह रही थी ड्राई क्लीन अपने लंग्स को करके जाएं। बाकी बीइंग अ साइंटिफिक टेम्पर आप लोग सब साइंटिस्ट हैं तो ये आपको अपनी फैमिली में भी फैलाना है, अपनी सोसाइटी में भी फैलाना है टू हैव दैट साइंटिफिक टेम्पर। रिचुअल्स में बहुत नहीं जाएं, अगर कुछ करते हैं तो उसको बड़े ध्यान से करें, सोच समझ के करें। अगर आप पूजा भी कर रहे हैं आप ध्यान में भी जा रहे हैं तो बड़े समझ से करें, बड़े ध्यान से करें। सिर्फ एज अ रिचुअल मत करें कि ये रिचुअल मैंने टाइम निकालना है इसके लिए मैंने करना, ये प्लीज मत करिए, क्योंकि रिचुअल से हमें बाहर आना है, अपने सेल्फ रियलाइजेशन करना है। और बाकी तो यू डिस्कवर योर सेल्फ व्हेन यू हैव कम हियर। इट्स नॉट अ तीन दिन का कोर्स में आप डिस्कवरी नहीं करते, आपको इंडिकेशन होती है उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप जब वापस जाएंगे तो आपको उसको जो आपने महसूस किया है उसको कंटिन्यू रखें, बांटिए और लोगों में। यही मेरी आपके साथ विशेज है एंड ऑल माय बेस्ट विशेज फॉर द कॉन्फ्रेंस। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहन नीरू जी का। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप जिनके माध्यम से यहाँ आए हैं, भ्राता पीयूष जी जो हमारे सीयू विंग के काफी पुराने सीनियर मेंबर और बहुत ही अच्छे स्पीकर है, आगे उनको सुनने का आपको चांस मिलेगा, उनका भी मैं थैंक्स करती हूँ। कहते हैं कि कुछ लोग शिक्षा देते हैं, बहुत कम लोग शिक्षा को अमल में लाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो शिक्षा का स्वरूप स्वयं ही बन जाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसी एक प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच उपस्थित है, मुंबई मुलुंद सब जोन की संचालिका एवं हमारे सीयू विंग की महाराष्ट्र जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय गोदावरी दीदी जी, हम उनके भी शुभ आशीष जरूर सुनेंगे।
ओम शांति। आज तो खुशियों का कोई पार नहीं है, हमारे बीच में हमारी आदरणीय प्राण प्यारी दादियां जब पधारी तो जैसे आत्माओं का सोलह श्रृंगार हो गया। और आज ये साइंटिस्ट इंजीनियर विंग का जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है कि जीवन की पुनः खोज, तो सचमुच इतने अनुभव युक्त प्रेरणा युक्त विचार सुन सुन करके ही पुनः खोज का मतलब ही है कि हमारे जीवन के अंदर संपूर्ण सफलता को प्राप्त करना। और जब हमारी दादियां मिली तो जैसे एक परमात्मा के लाइट माइट मिली, शक्ति मिली, और लगता है कि सचमुच सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार आई है। तो इतना हमारे मन के अंदर दृढ़ संकल्प, आज ये सभी यहाँ पधारे हुए यही संकल्प करें कि जीवन के अंदर चाहे हम भौतिकवाद में कितने भी हो, कितना भी हमारे पास भौतिक संपत्ति इत्यादि हो, लेकिन जब तक हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिकता नहीं आई है, परमात्म शक्तियां नहीं आई है, तब तक हम संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा कहना आप सभी को बार बार यही है कि ईश्वरीय शक्ति को आप हासिल करें। हमको भी याद आता है 50 वर्ष पूर्व हमें भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ वन मिलना हुआ, तो ईश्वरीय शक्ति का एहसास हुआ कि भगवान की शक्ति एक दुनिया में क्या चीज है जो हमें बहुत कुछ जीवन का परिवर्तन करा ही देती है। जब भगवान नहीं मिलता है, शक्तियाँ नहीं मिलती है, उनके गुण नहीं मिलते हैं, तब तक जीवन क्या होती है, और जब भगवान मिलता है, उनकी शक्तियाँ मिलती है, तो जीवन के अंदर जितनी जो बुराइयाँ हैं, अवगुण है, कई प्रकार के विकार है, वो सभी उन शक्तियों से निकल जाती हैं और मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है, और ख्याल आता है कि हर मानव अपना जीवन ऐसा ही ऊंच महान बनावे। वर्तमान समय का जीवन को हम देख रहे हैं कि जीवन तो है ही, हर मनुष्य आत्माएं कह रहे हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय जीवन में से जी निकल गया है और वन रह गया है। वन का मतलब भी होता है जंगल, तो जंगल में इंसान जैसे भटक गया है, अपने आप को ही भूल गया है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। तो परमात्मा पिता आकर के हमें सही अर्थ बताते हैं कि जी का मतलब ही होता है कि जी फॉर गॉड और जी फॉर गुड है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो आपके जीवन के अंदर गुड ही गुड होता रहेगा। तो इस नए साल के अंदर आप सभी को मुझे ये गुड विशेष देने में बड़ी खुशी हो रही है कि आप आए हुए सभी भाई बहने, बस यहाँ से गुड विशेष यही है गॉड की कि आपके जीवन में अभी एक नया दृढ़ संकल्प लेके जाइए कि हमें अपने आप का परिवर्तन करना ही है और सफलता को प्राप्त करना ही है। तो अवश्य है कि एक कदम हमारा, तो भगवान की गारंटी है कि हजार कदम मेरा होगा ही। और परमात्मा में यही कहता है कि आप मुझे मेरा ध्यान धरोगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि मैं आपका ध्यान रखूँगा ही। तो हमें इतना यकीन होना चाहिए कि गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, भगवान एक है, सत्य है, शिवम है, सुंदरम है। उनको अपने जीवन में याद करने से ही हमें सर्वशक्तियाँ भरपूर मिलेगी और सफलता भी प्राप्त होगी ही। और जीवन की पुनः खोज माना अंतरात्मा की तरफ मुड़ने से यही खोज मिलेगी कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की शक्ति हूँ, परमात्मा पिता की संतान हूँ। अगर इतना ही याद रहेगा तो जीवन का बेड़ा पार है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। दीदी जी ने एक बहुत अच्छी बात हम सबको कही कि भगवान को हम साथी बनाएं। निश्चित तौर पर मैं एक जगह कोटेशन पढ़ रही थी कि अगर लोहे का काम करके कोई टाटा और जूते का काम करके कोई बाटा बन सकता है, तो भगवान को याद करके हम खुशनुमा क्यों नहीं बन सकते हैं, बन सकते कि नहीं। तो भगवान को साथी बनाए। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी, आपकी उम्र को देखते हुए लेकिन आपके जोश को देखते हुए, कि जो चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, जो चट्टानों से टकराते उसे तूफान कहते हैं, लेकिन जो तूफानों से टकराते उसे ही इंसान कहते हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय भ्राता शंकरलाल तिवारी जी उपस्थित हैं। आप वर्तमान समय सतना विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
सर्वप्रथम आप सबकी ओर से अपनी ओर से परम श्रद्धेय परम अभिनंदनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पिता परमात्मा ब्रह्मा स्वरूप बाबा के चरणों में सत सत नमन अभिनंदन वंदन करते हुए मंच में विराजमान सभी मेरे आत्मीय मेरे समक्ष उपस्थित सभी बंधु एवं बहनें अभी दादी माँ के दर्शन के बाद उनके वाणी को सुनने के बाद विद्वानों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ कहने योग्य है शेष है पर कार्यक्रम के एजेंडे के मुताबिक मुझे खड़ा किया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और इस धरती में जो शिव स्वरूप आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं उन सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। आया है सो जाएगा आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा गया जंजीर। जीवन हम सबको मिला जीवन को हमने अपने ढंग से जीने की कोशिश की पर आज इस अभिनव सेमिनार ने अभिनव सम्मेलन ने जो पुनर्जीवन की खोज हम हैं कौन हम आए कहां से हैं हमें जाना कहां है क्योंकि जाना तो तय है और जब जाना तय है तो यह भी तय है कि श्मशान तक नहीं जाना है कहीं ना कहीं और भी जाना है जहां से हम आए उस परम शक्ति परमात्मा पर यदि हम अपना ध्यान जितने दिनों के लिए हम यहां हैं जितने घंटों के लिए यहां हैं उतने दिन और फिर यहां से लौट करके जो आज सुबह का कार्यक्रम हुआ मैं सोचता हूं वो शब्दों से वर्णन करने लायक मेडिटेशन का कार्यक्रम नहीं। यदि उसे हम अपने अपने जिलों में अपने अपने क्षेत्रों में हम स्वयं और अन्यान्य लोगों को प्रेरित करके क्योंकि अभी एक बहुत अच्छी बात एक वक्ता ने कही लखनऊ से पधारे हैं हमारे आदरणीय उन्होंने कही कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो बहुत विद्वान हैं बड़े वैज्ञानिक हैं बड़े बुद्धिजीवी हैं बड़े प्रोफेसर्स हैं उनके अलावा जो कम शिक्षित लोग हैं उनमें कोई अंतर है जो तुझमें है वो मुझमें है की स्थिति है। सिर्फ जो संस्कारी हैं उन संस्कारी बंधु और बहनों से निवेदन है कि हम सब जब यहां एकत्रित हुए हैं इस चमत्कारिक और इस सच में अभिनव सम्मेलन में यहां से हम जो लेकर के जाएंगे वो हमारे जीवन भर अकेले काम ना आए और लोगों के काम आए एकात्मता के साथ साथ हम सब एक ही ईश्वर के एक ही शिव बाबा के अंश हैं इस भाव से आम आदमी के लिए भी सामान्य जन के लिए भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरे जिले में मेरे क्षेत्र में एकदम भोले भाले गरीब आदिवासी मुझे मैंने मन में वो आ रहा है ऐसी बहनें ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी कोई ज्ञान नहीं सीखा कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी पर उसके बावजूद भी बाबा की कृपा से सच में वो हम सबके पिता हैं उनकी कृपा से मेरे जिले में तमाम ऐसी बहनें तमाम ऐसे बंधु जिन्हें कोई ध्यान नहीं कोई ज्ञान नहीं और उन्होंने अपने जीवन में भरपूर परिवर्तन किया। आज मैं यहां उपस्थित हूं मैं यहां तीसरी बार आया हूं मैं आपसे सच कहता हूं शुरू में भी कहा कि आए हैं तो जाएंगे पर जाने के पहले यदि हम अपने बाप को पहचान लें अपने पिता को पहचान लें और हमको उन्होंने यहां क्यों भेजा है जिस कार्य के लिए भेजा है यदि उस कार्य का कुछ अंश भी हम कर पाए तो मैं सोचूंगा इस सेमिनार में उपस्थित होने की सार्थकता हम सबको मिली। मैं बहुत विद्वान नहीं हूं पर विद्वानों के बीच में बैठ करके आप सबको सुन करके एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कई योग बताए, सांख्य योग, कर्म योग, और फिर एक बात अंत में कही स्थिति प्रज्ञ। अर्जुन ने कहा भगवान इतने प्रकार के योग आपने मुझे बताए, ये स्थिति प्रज्ञ नई बात कह दी, ये स्थिति प्रज्ञ है क्या, ये कैसा है, क्या करता है? इसको मैं हिंदी में कह रहा हूं, संस्कृत में श्लोक है गीता में, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है किसे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि स्थित प्रज्ञ सबसे बड़ी समाधि है, सबसे बड़ी योग है। आजकल तो योग को योगा अभी दीदी जी ने बताया था, विदेश के लोग कहने लगे हैं। पर जब कृष्ण ने अर्जुन से तमाम योग बताने के बाद स्थित प्रज्ञ की चर्चा की तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान हे कृष्ण ये स्थित प्रज्ञ क्या है। हिंदी में है स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है किसे, स्थित ही बोलता और कैसे डोलता। ये क्या है स्थित प्रज्ञ, ये स्थित प्रज्ञ जो होता है ये कैसे बोलता है, कैसे डोलता है, क्या करता है, इसके क्या लक्षण है? तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि दुख में न दुख हो, सुख में न सुख हो, पाता आत्म प्रसाद शो। हम दुख में दुखी नहीं हो और सुख में बहुत बेहवल होकर के उसी में डूब न जाए। यदि ये स्थिति कि दुख में दुख नहीं, सुख में सुख नहीं, जो भी समर्पण है शिव बाबा के प्रति समर्पण है, परमपिता के प्रति समर्पण है, और इस एकात्म मानववाद, एकात्मता का जो यज्ञ है, सबके जागरण का जो यज्ञ है, इसके लिए समर्पण है, तो मैं सोचता हूं यह सबसे बड़ी समाधि है, सबसे बड़ा योग है। आप सबको प्रणाम करते हुए, बार बार आप सबका अभिनंदन करते हुए, आज हम सबको दादी माँ के जो दर्शन हुए वो सच में अद्भुत क्षण थे, जीवन में अविस्मरणीय क्षण थे, उनका हमेशा याद करते रहें। प्रणाम। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता तिवारी जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे शख्स को जिसने जीवन में हमेशा यही प्रेरणा दी है कि जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती है। जी हाँ, दिल्ली से पधारे हमारे आदरणीय माननीय भ्राता जवाहर मेहता जी। आपने एयरफोर्स में रडार एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में 27 वर्ष सेवा देने के बाद 1990 में विंग कमांडर के पद से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया एवं अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। माननीय भ्राता जवाहर मेहता जी।
ओम शांति। मेरे पूर्व वक्ता तिवारी जी ने जो कहा उसके समर्थन में मैं अपना वक्तव्य दोहराऊंगा कि साधारण से साधारण या कितने भी पढ़े हुए जो भी हम भाई बहने हैं उनको आध्यात्मिकता, आत्मा, परमात्मा, जीवन का लक्ष्य, ऐसे गहन विषयों के ऊपर विचार करने की प्रेरणा देने एवं उनका मार्गदर्शन करने के लिए मैं इस मंच का माध्यम द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को तहे दिल से मुबारक दे रहा हूं और धन्यवाद भी दे रहा हूं कि ऐसे गुह्य विषयों के ऊपर जनसाधारण को प्रेरित करके और उनके जीवन में सुख शांति लाने की ये एक बहुत बड़ा अभियान है और उस अभियान में आप सभी यहाँ पे पधारे हुए भाई बहनों को मैं तहे दिल से मुबारक भी दे रहा हूँ, धन्यवाद भी कर रहा हूँ और साथ साथ नम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जितना भी समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में बिता रहे हैं, तीन चार दिन आप उसका पूरा पूरा उपयोग करें और अपने जीवन की बारे में जो नई खोज की ये सेमिनार है उसका पूरा पूरा फायदा लें और आगे भी अपने जीवन को इससे जुड़े रखने का अनुरोध करते हुए आप सभी का धन्यवाद करते मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। ओम शांति।
आदरणीय जवाहर मेहता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम के चेयरपर्सन, हमारे सीयू विंग की भी चेयरपर्सन और गुजरात जोन के जोनल डायरेक्टर आदरणीय सरला दीदी जी से हम सभी उनके आशीर्वचन सुनेंगे।
ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय आत्माओं को देख करके कितना हर्ष हो रहा है। चाहे कार्यक्रम पूरा भी हो गया, कहीं जाने वाले चले भी गए, उठने वाले उठ करके भी गए, परंतु आप सभी चात्रक पक्षी के माफक अभी भी आप कितनी शांति से और प्रेम से हम सभी का अनुभव सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। मैं किन शब्दों में आप सभी को धन्यवाद दूं या आप सभी का शुक्रिया अदा करूं? वैसे तो ये भारत भूषण जी को कार्य मिला हुआ है, परंतु दिल से आप आत्माओं पर इतना प्यार बरस रहा है जो आप सभी हमें भी खुश रखने के लिए चाहे समय को नहीं देखते हो, घड़ी को नहीं देखते हो, परंतु ये सुंदर घड़ी आई हुई है जो आप एक एक वक्ताओं से बहुत कुछ लूटना चाहते हो, लेना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, ऐसा मैं आप सभी आत्माओं को देख करके अनुभव कर रही हूँ। तो बहुत बहुत दिल से आप सभी के ऊपर प्यार की वर्षा हो रही है, स्नेह की वर्षा कहो, ये भी आप सभी का एक विशेष गुण देख रहे हैं कि हरेक को मतलब कैसे खुश रखे। तो बहुत बहुत ऐसी भी आज की जो सभा हमने देखी, कई सभाओं में जाने का तो होता है, कईयों से मिलना होता है, परंतु सचमुच में आप वो प्यासी आत्माएं हो, आप वो प्रभु प्रिय आत्माएं हो जो आप हमारे दादियों को भी अति प्रिय लगे हो। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा, फील किया होगा कि आज की सभा को देख करके हमारी दोनों दादियों ने यही कहा कि ये तो वही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं, ये तो कौन सी सभा है। तो आप सभी को उन्होंने भी पहचान लिया कि कौन इसके योग्य है या अयोग्य है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, परंतु आप अधिकारी आत्माएं यहाँ पर आकर के पहुँचे हो, तो ये देख करके उन्हें भी आभास हो गया। हमें भी यही फीलिंग आप सभी से आ रही है, तो कितना अंदर से आप सभी के लिए क्या सुनाए, कितना सुनाए, सुनते रहो, परंतु समय भी देखना पड़ता है। सारे जीवन की बातें हैं, पूरी लाइफ की बातें आपको अगर सुनाने बैठे, 14 साल की उम्र से लेकर के आप तो दो दिन से यहाँ आए हो, परंतु हम तो बचपन से ही इस संस्था में कैसे जुड़ गए, पूरा परिवार इसमें कैसे आ गया, हमारी ग्रैंड मदर कैसे मुंबई जैसी मायावी नगरी में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी, जहाँ कोई भी ब्रह्मा कुमारियों का नाम तक भी नहीं सुना था, परंतु इन देवियों को, दादियों को, सभी को देख करके हमें भी ऐसी प्रेरणा मिली और हमने ही बाल्यकाल में ऐसा सुंदर जीवन बनाने का निर्णय ले लिया और निश्चय कर लिया। हमारे माता पिता ने भी हमें पूरा साथ दिया, सहयोग दिया और हमारे मन की आशाएं उन्होंने पूर्ण की, क्योंकि हमने कहा कि हमको ऐसा सुंदर जीवन बनाना है, जो कहते तो है सत्यम शिवम सुंदरम, तो ऐसा सुंदर जीवन हम भी क्यों न अपना व्यतीत करें। जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, तो अब नहीं खोना है, जबकि इतना पा लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, जब रियलाइजेशन हो गया है, जब रियल आय मिल गई है, तीसरी आंख मिल गई है, व्हाट एम आई, आई को पहचानने की आय मिल गई है, नेत्र तीसरा मिल गया है, तो अभी हम कैसे उनको भूलेंगे या छोड़ेंगे। तो छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, परंतु पढ़ाई का लक्ष्य भी फिर वो न रहा जो पहले पढ़ने का लक्ष्य था, परंतु इसी पढ़ाई में लग गए। और जीवन हो तो ऐसा, कुछ जीवन में हमारा गोल होना चाहिए, कुछ मुझे बनना है, कुछ मुझे करना है, तो पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, मुझे बनना होगा। तो इन दादियों को देख करके हमें भी ऐसा, हम भी अपना जीवन बनाए, और जो परमात्मा को प्रिय है वही कार्य मुझे करना है, प्रभु पसंद बनना है, प्रभु को जो पसंद है, तो मैं भी क्यों नहीं अपना ऐसा सुंदर जीवन बनाए। तो मैं तो यही, जब सभी वक्ताएं बोल रहे थे तो मैं तो यही सोच रही थी, कहा जाता है काजी जी क्यों दुबले, सारे गांव की फिक्र, और हम तो गांव की फिक्र नहीं, सारे विश्व की फिक्र करते हुए दुबले नहीं है, दुगुने है, भगवान ने मोटा बना दिया है। जो आज कितनी भी बातें संसार में रहते हुए आती है, चाहे सामना करना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, कभी झुकना पड़े, कई बातें आती है, परंतु फेस करते हुए भी ये फेस बड़ा अच्छा रखना है, हमारा फेस बड़ा अच्छा हो, चाहे कितना फेस लाइफ में करना पड़े, सहन करना पड़े, परंतु मैं वो मूर्ति हूँ, मैं वो देवी हूँ, मैं वो साक्षात लक्ष्मी हूँ, मुझे अपने चेहरे से हरेक को दिव्य गुणों का भी साक्षात्कार कराना है, मेरे सुंदर जीवन का भी साक्षात्कार कराना है, ऐसा मुझे साक्षात बनकर के रहना है। कभी मन उलझन में न रहे, मन सदा मौज में रहे, मुझा हुआ भी न रहे, हम हमेशा अपने मन को सदा प्रसन्न रहे, सदा खुश रहे, एवर हैप्पी रहे, सदा हंसते रहे, कोई पूछे आपको क्या मिला है, कोई हमारे को देख करके, हमारे चेहरे को देख करके ये न हुए, ये पूछे नहीं कि आपको क्या हुआ है, क्या हुआ कुछ नहीं है, पर क्या मिला है, इतना प्रश्न जरूर पूछे, ताकि हम उनको सुना सके कि हमें जीवन में जो कुछ चाहना थी, जो पाना था, जो मिलना था, हमें हमारा जीवन साथी मिल गया, उसका संग मिल गया, उसका पक्का रंग चढ़ गया। जैसे मीरा गाती थी, यहाँ आप देख रहे हो कितनी सच्ची मीराएं जिन्होंने अपना जीवन वन नंबर का बना लिया ए वन, तो ऐसे परमात्मा को सत सत प्रणाम करते हुए नमन करते हुए जिसने हमें पसंद कर लिया और इतना सुंदर राह दिखा के मन की चाहनाओं को पूर्ण कर दिया है। तो अधिक समय न लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप भी बहुत इसका पूरा लाभ लेंगे और अनुभव करेंगे जीवन में अनुभव, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ही आत्मा। मैं सरला हूँ, सरला हूँ मैं नहीं कहती हूँ, मैं हूँ ही सरला। तो आप भी आज से चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे और उसी परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे, आपके अंदर वो शक्तियाँ प्राप्त होंगी। जिन शक्तियों को प्राप्त करके मनोविकारों पर विजय प्राप्त करके आप विजयी आत्माएं बन सकते हो, विजय माला के मण के प्रभु के गले के हार बन सकते हो, ऐसी मंगल कामना शुभ भावना आप सभी के लिए मैं भी करती हूँ, ऐसी आशा। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी जी ने एक बात कही कि सदा खुश रहना है, चेहरा हमारा खुशी में सदा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय भारत भूषण भाई को। आप हमारी इस विंग के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं और आप अपने जोन के इस विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ।
ओम शांति। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सबसे पहले धन्यवाद करता हूं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, इसके पीछे बैक पे उनका बड़ा सुंदर फोटो है, जिन्होंने देखा होगा डायमंड हॉल, तो कैसे वो गुप्त शक्तियां इन सबको तैयार करने वाली उनकी हम सब रचना है, वो सारा प्लानिंग उन्हीं से ही हमें मिल रहा है। ये विंग वाइज प्रोग्राम करो, ऐसा करो, ऐसा सब बाबा के इशारे अनुसार ही सब कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनका तह दिल से धन्यवाद करते हैं, अपने प्यारे बाबा का, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, जो इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देके हम सबको आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सौभाग्य हमारी विंग का और आप सबके योग का। कई बार ऐसे टाइम आए हैं, ये हाल खचाखच 30,000 लोग भरे होते हैं, तड़फ होती है, दादियां हमारे बीच में आए, निर्वैर भाई बीच में आए, लेकिन इंटरनेशनल संस्था है उसका कार्यभार होने के कारण, कभी स्वास्थ्य के कारण वो चाहते हुए भी नहीं पहुंच पाते। सबकी इच्छा होती है कि 2 मिनट के लिए तो आएं। आज ये हमारी विंग का सौभाग्य है, तीनों दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी और हमारे निर्वैर भाई तीनों ही हमारे बीच में इस विंग में। इट इज रियली वी आर हाईली फॉर्चुनेट। इस तरीके से उनका भी मैं तह दिल से धन्यवाद करता हूं कि समय निकाल के हम सबके बीच में पहुंचे। आपने देखा कैसे एकदम एटमोस्फेयर चार्ज हो गया उनके आते ही, और सब उनके सामने, चाहे कोई जीएम हो चाहे कोई ईडी हो, सब बच्चे बन जाते हैं, बाबा आ गया, बाबा आ गया, कैसे दादी खुशी में सबको नचा दिया। फिर मैं धन्यवाद करता हूं हम सबके बीच में मिस नीरू अब्रौल बैठी हैं, जिनका बहनों से बहुत स्नेह है, जैसे बताया हमारे पास पानीपत में भी आती हैं, तब अक्सर मिलते रहते हैं बहने, और वो आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, और साथ में उन्होंने शोभा बढ़ाई हमारे इस कार्यक्रम की, भ्राता शंकर लाल तिवारी। देखो उनकी सूरत से ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। 3-4 मिनट मेरे से जो उनसे वाइब्रेशन मिला, जो शेयर किया बैठे बैठे उन्होंने, मुझे लगा सचमुच ये बहुत तपस्वी एमएलए हैं, राजनीतिक में हैं लेकिन तपस्वी भी हैं। और उन्होंने भी इस विंग की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ भ्राता राकेश मित्तल जी जो आईएएस हैं, बड़ा सुंदर की नोट स्पीच किया, 16 पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखी हैं, बड़े अच्छे राइटर भी हैं। तो तीनों के लिए, हमारे जो तीनों गेस्ट, उन सब के लिए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन। अब हमारी गाइडिंग लाइट्स सरला दीदी जी, प्रेरणा के स्रोत, और भ्राता मोहन सिंगल जी जो दिन रात बढ़े चलो, आगे चलो और बढ़ो, सबको साथ टीम को लेके कितने उत्साह से पूरे, मैं समझता हूं 3-4 महीने से इस कॉन्फ्रेंस के लिए जितना उन्होंने दिन रात मेहनत की है। तो हमारी सरला दीदी और मोहन भ्राता जी के लिए जितनी तालियां बजाएं उतना कम है, रियली वो गाइडिंग लाइट्स हैं इस हमारी पूरी विंग के लिए। बहन माधुरी जी कहते हैं बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको जैसा नाम हो वैसा ही काम हो, लग रहा था ना माधुरी बहन बोल रही है, मधुर पुष्प लगातार झड़ ही रहे हैं। तो माधुरी बहन ने कितना सुंदर मधुरता पूर्वक मन संचालन किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज्यादा किसका, आप सभी का, आप सभी का जो इतना दूर दूर से आए हैं, और हमारे गाइड्स भाई सब तरफ से, और कितने पेशेंस से आप बैठे हुए हैं, बहुत ही स्नेह पूर्वक सुनने के लिए। तो सभी डेलीगेट्स के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। बीच में से आप गए नहीं, मैं जो बैठे हैं पॉजिटिव देखते हैं कितना उनका पेशेंस है, क्योंकि एक महा लाइफ रीडिस्कवरिंग पे है ना सारा प्रोग्राम, तो उसके लिए केवल दो शब्द कहते हुए, एक महात्मा जी थे बड़े सिद्ध पुरुष थे, एक जिज्ञासु गया, उसको पता था इनके सामने बैठते ही बड़े सुंदर अनुभव होते हैं, तो वो गया, मुझे भी महात्मा जी अनुभव कराएंगे, जरूर कराएंगे, बैठो। अभी बैठा ही था, बड़ी तेज से एक डिजास्टर आया, साइक्लोन आया, इतना तेज तूफान आया, छतें हिलने लग गई, टीन की थी, तो वो फटाफट भाग गया, वो तो भाग गया बहुत दूर। उसने कहा महात्मा जी आप भी भागो भागो बचाना है। महात्मा जी अंतर ध्यान हो गए, आधे घंटे बाद जब तूफान रुक गया फिर वो आया सेफ स्थान पे, जहां महात्मा जी आप बैठे रहे, आपको डर नहीं लगा, आप बैठे रहे मगन होके। कहते नहीं, देखो जब तूफान आया तुम भी भागे हम भी भागे, तुम बाहर भागे हम अंदर भागे, बस फर्क इतना था। इसलिए आप जो बैठे हुए हैं पेशेंस से सुन रहे हैं, आप अंदर की ओर भागे, कितना अच्छा है, इसलिए आपके लिए तालियां बजवा रहे हैं। जैसा जो देखे लाइफ रीडिस्कवरिंग पे, जिन्होंने डिस्कवर किया, किसी ने कहा व्हाट इज लाइफ, लाइफ लाइफ इज ए स्ट्रगल, फाइट इट। व्हाट इज लाइफ, लाइफ लाइफ इज ए ट्रेजेडी, फेस इट। व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज ए सारो, ओवरकम इट। ये थे जिन्होंने नेगेटिव देखा, और जिन्होंने पॉजिटिव देखा, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज ए गेम, प्ले इट। लाइफ इज ए सॉन्ग, सिंग इट। लाइफ इज ए गिफ्ट, एक्सेप्ट इट। और किसी आध्यात्मिक से पूछा व्हाट इज द लाइफ, लाइफ इज ए स्पिरिट, रियलाइज इट। जैसा देखा वैसा ही पाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक अंतिम शेर से पूरा करूंगा, जो जैसा देखा वैसा पाया पे, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ ऊपर आसमां में चांद देखा, किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण भाई का, सभी का धन्यवाद करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भूषण भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अब इतनी देर हमने धैर्य रखा ही है, तो एक मिनट के लिए और थोड़ा सा धैर्य रखें, और अंतिम हम उस परमात्मा पिता को जरूर धन्यवाद दें। तो एक मिनट के लिए हम सभी शिव पिता की याद में बैठेंगे, उसके बाद हम हॉल के राइट साइड में चलेंगे। आप देख रहे हैं वहां पे बहुत सारे बैलून्स बंधे हुए हैं उड़ने के लिए तैयार। हम सभी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, लाइफ को रीडिस्कवर करने आए, तो हम सब अपने बचपन में चलेंगे कुछ पल के लिए और इन गुब्बारों के साथ उस बचपन को जिएंगे, इन गुब्बारों को अपनी खुशियों के साथ उड़ाएंगे। एक मिनट के लिए सभी बैठेंगे और फिर सभी चलेंगे बैलून सेरेमनी।
सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो,
सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो,
सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो।
चलो सबके दिल में प्रभु प्यार।